मुश्किल अल्फाज की वजाहत आयत नंबर 41 युसारे ऊना, रूट वर्ड है सीन रा ऐन, सुरा जल्दी जल्दी करना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयत नंबर 41 में ही है समाऊना और सीन मीम ऐन, और इसके मानी होते हैं सुनना, इसी से समात है और इसी से सामे। आप देखें रमजान के महीने में एक हाफिज साहब नमाज पढ़ाते हैं, जमात कराते हैं ना तरावी, और एक सामे होते हैं हाफिज साहब, है ना। तो जो जमात करवा रहे होते हैं हाफिज साहब, जो दूसरे सामे हाफिज होते हैं वो सुन रहे होते हैं कि ये हाफिज कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो सामे कौन होता है? सुनने वाला। अब यहाँ पे समाऊना मीम पर आपको शद भी नजर आ रही है, तो इसके मानी के अंदर जो है वो क्या है कि शिद्दत पाई जा रही है। इससे मुराद क्या है कि कान लगा कर सुनना, बहुत ज्यादा तवज्जो से सुनना। और मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इससे इसके दो मानी हैं। इसके एक मानी तो ये हैं कि सुनना, बहुत ज्यादा सुनना, यानी जासूसी करना, और दूसरे मानी ये हैं कि दूसरों की बातें सुनना, बातें कबूल करना। यानी एक मानी होते हैं जासूसी करना, बहुत ज्यादा सुनना, और दूसरे मानी है कबूल करना। मसलन हम नमाज जब पढ़ते हैं तो आप जब क्या कहती हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इसका क्या मतलब है कि सुन ली अल्लाह ने बात उनकी जिसने हमद उसकी बयान की, यानी अल्लाह ने कबूल कर ली बात उसकी जिसने अल्लाह की हम्द बयान की, यानी हम जो अल्लाह की बयान करता है अल्लाह उसकी हम्द को फिर कबूल कर लेता है। तो समाऊना सुनना भी और जासूसी के मानी देना भी और कबूल करना भी। आखरीना, अगर खा के नीचे जेर होती तो आखिर आखिरी होता, तो जब खा पर जबर होती है तो इसके मानी क्या है कि दूसरा, आखर दूसरा और आखिर आखिरी। वमई यूरी दिल्लाहु, तो राव और दाल रौद से है, इसके मानी है इरादा करना। फिर इसके बाद है आयत 42 में अक्कलूना, और वैसे तो होता है हमजा काफलाम, अकल के मानी क्या है, खाना, है ना, और कुल खाओ, और काफ दूसरे दो नुक्ते वाले के साथ हो कुल तो कह दीजिए, है ना, और अक्कलूना बहुत ज्यादा खाने वाले। यहाँ पे भी जो है वो क्या है कि बहुत ज्यादा शिद्दत पाई जाती है। और अगला लफ्ज जो है वो है सीन हाता लिस्सोहती, लिस्सोहती जो है सीन हाता सोहत, सोहत के लफ्जी मानी है किसी चीज को जड़ बुनियाद से खोद कर बर्बाद कर देना। अब आप देखें कि अगर आप किसी को भी बुनियादों से खोदेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी ना, खराब हो जाएगी ना। तो सोहत के मानी क्या है कि किसी की जड़ 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 से ही किसी की को खराब कर देना, बुनियादों से, रूट से। जैसे कोई घर बना हुआ है तो आप उसकी बुनियादों को ही अगर उखेड़ना शुरू करेंगे तो घर खराब हो जाएगा, है ना। दरख्त है, उसकी जड़ें जो हैं, जड़ों को अगर खराब करना शुरू करें तो दरख्त खराब हो जाएगा। तो सीन हाता के मानी क्या है कि किसी चीज को जड़ बुनियाद से खोदकर बर्बाद कर देना। और यहां सोहत लफ्ज जो है ये रिश्वत के मानी दे रहा है, ये सहाबा की राय है, मुफस्सरीन की राय है कि सोहत दरअसल रिश्वत को कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिश्वत जो शख्स लेता है या देता है वो लेने और देने वाले दोनों को बर्बाद करती है। रिश्वत से मुल्क की जड़ें भी, बुनियादें भी बर्बाद होती हैं, और सोसाइटी का जो अमन है वो भी तबाह होता है। तो जिस भी मुल्क में रिश्वत का जोर हो, जिस भी मुल्क में रिश्वत का चाल चलन हो, वहां कानून मुअत्तल हो जाता है। तो जब कानून किसी मुल्क का रुक जाए तो क्या है, क्योंकि कानून ही के जरिए अमन अमान कायम होता है, तो गोया के वो उसकी जड़ें ही खराब हो गई। ठीक है, तो ये है इसके मानी सोहत के। फिर इसके बाद जो है आयत नंबर 43 के बाद 44 को भी आप देख लें, तो 44 में है रब्बानी यूना, ये रब से ही है और ये उलमा को कहते हैं रब्बानी, मशाइख अल्लाह वाले जो ईसाइयों के उलमा थे उनको रब्बानी कहते हैं। और अहबार, अहबार अहबार जो है ये यहूदियों के जो फुकहा हैं उनको कहा जाता है और ये हिब्र से है, हाबारा। और हिब्र जो है इसके मानी क्या है के, यानी जैसे स्याही के लिए भी ये लफ्ज आता है और इसके अलावा क्या है कि स्याही से ही लिखा जाता है और इल्म हासिल किया जाता है, तो उससे जो है कोई आलिम बन जाता है। तो यानी ईसाइयों के जो उलमा थे उनको रब्बानी कहते हैं और जो यहूदियों के फुकहा हैं उनके लिए अहबार का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर है बिमस्तो फिजू, तो हाफाजोई है, हिफाजत से है, और अलिफ सीन ता शुरू में लग गई तो मानी क्या है कि उनसे हिफाजत मांगी गई थी, ठीक है। और फला तख्शव उन्नास वख्शौनी, इसका रूट वर्ड क्या है, खाशीन या खशियत, ये भी डर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तश्तरु, क्या रूटवर्ड है, शीन यारा, और इसकी खास बात क्या है, जवेल अजदाद में से है, खरीदने और बेचने दोनों के मानी इसमें पाए जाते हैं। समन जो है ये कीमती चीज को कहते हैं, समानन कीमती कोई चीज ना, कीमत किसी चीज की और कीमती भी, ठीक है, और कलील यानी थोड़ी कीमत। समीना लोग नाम भी रखते हैं, वो इसी से है। फिर आगे है आयत नंबर 45 और ये तो आपको आता ही है, नफ्स का नफ्सी है, आयन का आयनी है, आयन आंख को भी कहते हैं और आयन चश्मे को भी कहते हैं। दोनों में मुनासबत क्या है कि जैसे आंख से एक एक आंसू बहता है ना, चश्मे से भी एक एक आंसू टपकता है, जब चश्मा फूटता है तो जैसे आंखों से आंसू फूट कर निकलते हैं ना, एक आप फूट कर रोए तो आंसू एक एक करके बहना शुरू हुआ, तो चश्मे जो बहते हैं, चश्मे जब फूटते हैं पहाड़ों पहाड़ी इलाकों में, तो एक एक पानी का जो बूंद है उसमें से फूटती है निकलती है। तो ये तो उन्हीं को पता है ना जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या जिन्होंने पहाड़ी इलाकों में जाना है ना, तो उनको अंदाजा है। फिर इसके बाद आगे है अनफ, अनफ किसको कहते हैं, नाक को कहते हैं। उजुन किसे कहते हैं, कान को कहते हैं। सिन किसे कहते हैं, दांत को कहते हैं। सिन आपने कब पढ़ा था, जब आपने तजवीद पढ़ी थी तो उसमें क्या याद किए थे, सारे दांतों के नाम याद किए थे, अस्नान है ना। अच्छा जुरू, जुरू किसका, इसका वाहिद क्या है, जरहुन, जरहुन वाहिद, जुरू जमा है और जख्म को कहते हैं। और किसास, स्वाद स्वाद स्वाद, और ये बदले के हाँ मानी में है। और वैसे किसास से किस्सा भी है, बदला कैसे लेते हैं कि जब कोई किसी को कत्ल कर देता है तो किसास क्या है कि उसको फॉलो किया जाता है मुकदमे को और फिर उससे बदला जो है वो लिया जाता है, तो कातिल का पीछा करना है ना, उससे बदला लेना। तसद्दक सिद्क से है, सदका। कफारतुन, कफारतुन के लफ्जी मानी है छुपाने वाली है ना, कुफर काफारा छुपाना, और कुफर कहते हैं सित्र को है, सतर को, जैसे किसी चीज को, असत्रु अलकुफरु असत्रु यानी छुपाना। आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा अक्सर काफूर, काफूर खुशबू को कहते हैं ना, तो मुर्दे की जो बू होती है तो आप देखें कि उसको काफूर, वो खुशबू छुपा देती है, खुशबू बिखर जाती है और बू को छुपा दिया जाता है, इसलिए उसको काफूर कहते हैं, छुपा देने वाली। कभी आपने गौर किया, ये कफन को भी लगाते हैं और काफूर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी उसका भी रूट वर्ड क्या है, काफारा। फिर इसके बाद कफ़ेना, या पहले भी पढ़ चुकी हैं, क्या रूट वर्ड है, काफावो, और इसके माने क्या, रीढ़ की हड्डी के मोहरे, जैसे वो एक के बाद एक होता है ना मोहरा, इसी तरह यानी मुसलसल कोई चीज एक के बाद दूसरी पै दर पै मुसलसल के माने ये चीज जो है वो ये लफ्ज देता है। फिर आयत 46 में है मोएजतन, वास से है वो एन जोए, ठीक है। फासिकून फिस्क से है फासीन फाफ, इसके माने क्या है, निकल जाना फट पड़ना, फासिक यानी अल्लाह की हदों से निकल जाने वाला, अल्लाह की बंदगी से निकल जाने वाला। आयत 48 में है मोहैमिनन, मोहैमिनन हा मीम नून, रूट वर्ड है इसका हा मीम नून, इसके मानी है हिफाजत करना, निगरानी, शहादत, इमानत, ताईद और हमायत के मानी में ये इस्तेमाल किया जाता है। मसलन हैमन रजुल शई, आदमी ने फलां चीज की हिफाजत की। इसी तरह अगर परिंदा अपने चूजे को अपने परों में ले ले और महफूज कर ले तो उसके लिए भी आता है हैमन तायरु अला फराखे, कि परिंदे ने जो है वो क्या किया, अपने परों के नीचे ले लिया। इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाह ने एक मरतबा लोगों से कहा इन्नी दाइन फहै मनु, मैं दुआ करता जाता हूं तुम ताईद में आमीन कहते जाओ, यानी मैं जो दुआ करता जाता हूं तुम उसकी ताईद करते जाओ, आमीन कहते जाओ। तो ये सारे मानी देती है। कुरान को अल किताब भी, यानी कुरान भी इसका नाम है, इसके बहुत से नाम है, लेकिन अल मुहैमिन भी इसका एक नाम है कुरान का, मुहैमिनन। क्यों? इसलिए कि कुरान में पिछली तमाम किताबों की तालीमात महफूज हैं। कुरान में पिछली तमाम किताबों की जो असल तालीमात थी वो इसके अंदर प्रिजर्व है, महफूज है, तो कुरान इस पर निगहबान है। तो अब इन तालीमात पे बरहक का कोई हिस्सा जाया नहीं होगा। तो कुरान क्या करता है, पिछली किताबों में जो हक चीजें अभी भी मौजूद हैं उनकी ताईद करता है, सही है। तो मुहैमिन के कितने मानी आपने पढ़े, हिफाजत करना, निगरानी करना, शहादत देना, इमानत, ताईद और फिर हमायत करना। फिर इसके बाद है फाहकुम, फाहकुम हकम से है। एक आपने फैसले के लिए काजी भी पढ़ा था और एक हाकिम, तो दोनों में काजी और हाकिम में क्या फर्क है? हाकिम जब कोई फैसला करता है ना तो साथ ही उसको नाफिज भी करता है, उसके पास इख्तियारात होते हैं ना। और जो काजी होता है वो क्या करता है, वो एक फैसला कर देता है, जो भी उसके पास केस आता है उसका वो फैसला करता है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और तत्तबे, इसका रूट वर्ड क्या है, हाँ तबा, इसी से जो है वो इत्तबा करना, फॉलो करना, उसके माने भी ये देता है। अहवा अहम, इसका रूट वर्ड क्या है, हाव या, ख्वाहिश के लिए आता है, अहवा यहाँ पे जमा है और हाव या के मानी क्या है, बुलंदी से गिराना। तो ख्वाहिशात क्या करती हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं होती, आप ख्वाहिशात में ही होते हैं, अपने दिल की आरजुओं में होते हैं और वो आरजुएं आपको गिरा देती हैं। जैसे वो शेख चिल्ली की कहानी भी आपने सुनी होगी ना कि हाँ वो मेरे पास 5 रुपए होंगे, फिर मैं उसका अंडा लूंगा, फिर अंडे से मुर्गी, फिर मुर्गी के बच्चे, फिर बच्चों से जो कारोबार शुरू होगा और फिर उसके बाद वो अपनी अभी, और वो ऐसी बातें हैं, ये ख्वाब हैं। और अब क्या है कि वो कुछ भी उसके पास नहीं रहता, आंख खुलती है तो कुछ भी पास नहीं है ना, या कोई भी अगर अंडा ही है तो उसी को हाथ मारा तो टूट गया, या सर पर तेल है और वो प्लानिंग कर रहा है कि इसको बेच के क्या क्या करेगा, तो सर हिला तो तेल ही गिर गया नीचे, है ना। तो ख्वाहिशात क्या है कि हकीकत में कुछ भी नहीं इंसान के पास, तो इसीलिए अहवा ख्वाहिशात को कहते हैं। फिर इसके बाद है शिर अतन व मिनहाजा, तो शिर अतन, हाँ इसका रूट वर्ड है शीन रा एन, किसी चीज का खींचकर या बुलंद होकर सामने आना, किसी चीज का खींचकर या बुलंद होकर सामने आना, जाहिर होना। तो इसी से शरीयत, वाजे और मुतय्यन रास्ता, किसी कौम के का कानून और इस्लामी कानून यानी खुदाई अहकाम, जाब्ता हयात, ऐसे कवानीन को शरीयत कहते हैं جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو اس زمانے کے مطابق جو ہے وہ دیے ہیں. شریعت شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا, اللہ نے تمہارے لیے دین سے وہی راستہ مقرر کیا جس کا حکم نوح علیہ السلام کو بھی دیا تھا. ٹھیک ہے, تو شریعت جو ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے لیے پیغمبر کے ذریعے واضح اور متعین راستہ, اور یہ اللہ نے جو راستہ بتائی یہ بالکل واضح ہے, بلند ہے, سامنے ہے, کوئی اس میں ابہام نہیں ہے. اور اگر شرعی اصطلاح میں آپ سنہ استعمال کریں تو سنہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صرف رسول اللہ کے اعمال اور ان کے فرامین. آگے لفظ ہے منہاجا, نون ہا جیم, نہج, کام یا راستے کا واضح ہونا, شرعی احکام کی ادائیگی کا طریقہ کار, شرعی احکام کی ادائیگی کا طریقہ کار, اس کو کہتے ہیں منہاج. کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کہتی ہیں کہ اس کی نہج یہ ہے, اس کام کرنے کا واضح طریقہ یہ ہے, اس کا راستہ یہ ہے. تو منہاج سے مراد کیا ہے؟ ایک راہ عمل, ایک واضح راستہ جو شرعی احکام کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دیا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ, بَعْلَمْ وَوْبِ اور بَعْلَمْ يَابِ, اس کے معنی کیا ہے؟ آزمانا, پرانا کرنا, جیسے کپڑا نیا ہو اور پھر اس کو پرانا کر دینا. اسی آزمائشیں جو ہیں وہ کیا ہے کہ انسان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے آزمائشوں سے, ہے نا, جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو آزمائشیں انسان کو بلونی کی طرح بلوتی ہیں, جیسے کہ بلونی مدانی جو ہوتی ہے وہ دہی کو جب بلوتی ہے تو اس میں سے مکھن نکلتا ہے آزمائش کے بعد. فاستبقوا الخیرات, فاستبقوا سبق سے ہے سبق. آج آپ کا سبق نمبر کیا ہے؟ 71. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ 70 سے 71 میں آپ آگے, تو سبق کا آگے جانا. تو جب آپ آگے بڑھتی ہیں, آگے پڑھتی ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ سبق فلاں. ٹھیک ہے, تو آگے کے سبق کو سبق کہتے ہیں, آگے بڑھنا. تو کیا ہے؟ کمپٹیشن, مقابلہ کرنا, اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مسابقہ, عرب لوگ کمپٹیشن رکھتے ہیں, کہتے ہیں مسابقہ ہے, حفظ کا مسابقہ, حفظ کا مقابلہ ہے. آگے بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور الف سین تا کے معنی ہوتے ہیں مانگنا. مرجعکم راجعین, عین رجا, رجوع کرنا سے ہے. فینبئکم کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون با حمزہ. نبا خاص خبر کو کہتے ہیں, عام خبر کو نہیں. بلکہ پھر اس کے بعد ہے این یفتنو کا, آیت 49 میں فتن سے ہے. فتن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آزمائش, فتنہ, یعنی سونے کو بھٹی میں پگلا کر جو ہے وہ نکھارنا تاکہ اس کا کھوٹ الگ ہو جائے, اس کا خام کھوٹ جو ہے وہ الگ ہو کر سونا کندن بن جائے. پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 50 میں جاہلیتی, عظیم ہا لام جہل, جہالت, زمانہ جہلیت, یعنی جو بھی غلط باتیں ہیں اس کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ یوں ہی اس کو یاد کر سکتی ہیں, اسلام کا اپوزٹ جہلیت ہے نا. تو اسلام کے معنی ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری, اور جہلیت کیا ہے؟ نفس کی فرما برداری, کفر کی فرما برداری, خواہشات کی فرما برداری, ہے نا, یعنی فرما برداری کے برعکس آپ کا سر اٹھانا, مرضی کرنا. آسنو کیا ہے؟ اسم تفضیل ہے. یو کے نون کیا ہے؟ یقن سے ہے. یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے, اس سے اگلا, کہ جب ایمان سینے کی ٹھنڈک بن جائے, جب سینے جس چیز پر آپ کو یقین ہے اس پر آپ کو دل میں سکون بھی ہو, اطمینان بھی ہو, خوشی اور محبت کا احساس بھی ہو, تو ایقان کہتے ہیں. یقین ایمان سے بھی آگے ہے. تو آخری حصہ کیا تھا؟ حکم لقوم یوقنون.